Radio.
Sudi furniture, Nia Sal, Nia Furniture, 905-874-7171. Sudi Furniture Store Clearance.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजर्स कॉस्मेटिक्स की बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स वाली बड़ी क्रिसमस वेयरहाउस सेल खास आपके लिए आ रही है। वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन पर्सेस, लगेज, डिजाइनर सन क्लासेस, नेल एंड हेयर कलर्स और भी बहुत कुछ। 80% तक की सेविंग्स रहेगी। बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम। ध्यान रहे, सेल इज फ्रॉम नवम्बर 16 टू डिसम्बर 8, फ्राइडे सैटरडे और संडे से मंडे। Lisa's Warehouse Sale, yani zyada savings for less. Visit lisascosmetics.com. इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
भाई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह, 6472903773, 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com، لوکل نمبر 6478724900।
چاندنی
بینکوٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز، Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Indoor and outdoor golf course facilities. Chandni Banquet Hall. For appointment, call today at 905-458-8888. 905-458-8888. Or visit chandnivictoria.ca. Chandni.
ओह, दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस को बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज लिंगटन की नुक्कड़ पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
Amex Travels five-star हज packages। आप हज पे जाना चाहते हैं? Confusing हज app के हाथों परेशान मत हो, नियत आपकी बुलावा रब का, इंतजाम और एहतमाम Amex Travel का। एयर टिकट्स मदीना, मक्का, मिना टेंट्स, अरफात कैंप, हरम के सामने होटल की सहूलत से लेकर डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, हर चीज सिर्फ Amex Travels के साथ। लिमिटेड सीट्स, कॉल Amex Travel।
Elite Hajj 2025 packages exclusive special deals for US, Canadian, Pakistani passport holders. Limited seats.
Book now. Call 416-599-5200. 416-599-5200.
फर्स्ट मॉर्गेज सेकंड मॉर्गेज या फिर हो गए लोन
सोचो ना बस बिल्कुल भी उन्हें मिलाओ फोन
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या काकता उस जिंदगी मुश्किल कर देता है बाकी बातें एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
अकाल 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 मॉर्गेजेस
बिरयानी तो ठीक है लेकिन भाई डिनर मीठे के बगैर अधूरा होता है कोई देसी मीठा नहीं है
अब्बू कनाडा में आके भी आपका देसी मीठे का शौक नहीं गया
क्यों ना जाए मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा है ना ताज़ा कनाडा में बना और बिल्कुल वैसा ही जैसे बैक होम में मिलता है
हाँ अब डिनर पूरा हुआ
मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा हर खाने के बाद मिठास भर दे GTA में देसी ग्रोसरी स्टोर्स पे दस्तयाब या ऑनलाइन ऑर्डर करें आज ही विजिट करें multanihalwadelights.com 416-270-4439 416-270-4439 मुल्तानी डिलाइट सोहन हलवा ऑलवेज फ्रेश
कर्ज से निजात के लिए एक ही नाम मोहम्मद सिद्दीक ऑल द सॉल्यूशन पुरसकून जिंदगी और क्रेडिटर्स की कॉल से छुटकारा
मोहम्मद सिद्दीक ऑल डेट सॉल्यूशन बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी कंसोलिडेशन करते हैं अप टू 80% मोहम्मद सिद्दीक आपके लिए काम करते हैं पुरसकून जिंदगी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की जामिन अपनी जिंदगी को पुरसकून करने के लिए कर्जों से पाक करने के लिए राबिता कीजिए मोहम्मद सिद्दीक 416-671-0577
वेलकम बैक एक बार फिर आपको खुश आमदीद प्रोग्राम 770 एम डायल पर साजो आवाज और मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ वो ही रंगा रंग खबरें लेकर अपने चार फॉलोअर्स को टैग्स डालकर लाइक दबाकर उनको बोलती हैं कि भाई देखो अभी आने से पहले उनको मैसेज कर रही थी वीडियो न्यूज शुरू होने वाली जल्दी जल्दी आ जाओ वो बेचारे चार लोग क्या मजमा लगाएंगे क्या मतलब क्या करेंगे चार लोगों जलसे में क्या होना है ये वही हालात है जो आजकल जो हालात पाकिस्तान में ही चल रहे हैं के बाजान 24 को चार लोग भी जो है ना वो इस्लामाबाद में ना आ पाए तो इनको बुला लेते हैं प्रोग्राम ऐसा करते हैं पहले इनको बुला लेते हैं आज ऐसा कोई और बात करते ही नहीं है इनको पहले बुला लेते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि शहर इकतदार में क्या हो रहा है दुनिया भर में क्या हो रहा है तो आइए खुश आमदीद कहते हैं इनको प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कैसी हैं
WS हम ठीक हैं
हाँ जी आप तो ठीक
हैं तो बात ये है कि मेरे कजन ने मुझे हाँ। एक लफीता भेजा है
वो क्या है?
उसने कहा है जी बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो ईरान कब्जा करना चाहता है वो अपना बोल रहा है
ईरान और इंडिया दोनों
हाँ, हाँ, ईरान कहता है ये मेरा हिस्सा है
ठीक हो गया
ठीक है जी जो केपी है उसके बारे में जो अफगानिस्तान है वो कहता है ये मेरा हिस्सा है
अच्छा ये उसका हो गया
हाँ वो जो ऊपर जो है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वो इंडिया कहता है ये मेरा हिस्सा
अच्छा,
है
ये उनको बांट दिया
तो वो कहते हैं मेरे पंजाबी कजन्स कहते हैं ते जिना साहब नु छोटे जे खिते वास्ते इतने रोले वाली जमीन उते इतना शोर मचाने की जरूरत है
बेसिकली हुआ क्या कि वो लॉटरी में निकला था लॉटरी वाली चीज तो या तो जैकपॉट है
जिना साहब बैठे रोले वाली जमीन तुसी क्यों ली
जिना साहब वैसे तो बहुत ही वो कहते ना दूर अंदेज
हाँ।
जो है वो इंसान थे फोरकास्टिंग हाँ। कर सकते थे
हाँ।
लेकिन उन उनसे कहीं ना कहीं गलती हो
हाँ, हाँ, हाँ।
मुझे ऐसा लगता है पर्सनल हाँ। मेरी राय हाँ। बिल्कुल कोई सीरियस ना ले इस बात को मुझे लगता है उनसे गलती हो गई
हाँ।
उनको अंदाजा उनको बेसिकली वो किस पे तकिया रख के बैठे हुए थे जो कि इस साइड से लोग आ रहे थे यानी बांग्लादेश यूपी साइड बिहार साइड इधर उधर से जो मुसलमान जो कि माइग्रेट एक्चुअल कर रहे थे मैं कहता हूं जिन्होंने एक्चुअल रोल भी अदा किया
हाँ।
मैं किसी से ऑफेंड नहीं को पंजाब से अल्लाह माफ करे कोई सारे मेरे दोस्त यार हैं बहन भाई हैं लेकिन वो ज्यादा था कि हाँ। वो तो उन्होंने कहा था कि यार ये सब चीजें हैंडल हो जाएंगी لیکن انہیں کیا معلوم تھا جناب.
وہ اصل میں وہ جو برٹش
ایک چیز ہم سب کو سمجھ لیں
نہیں, وہ جو برٹش ہسٹورین تھے ان سے کسی نے پوچھا جنہوں نے جناح صاحب کے اوپر لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جناح صاحب سے کہاں پہ غلطی ہوئی, کیونکہ لوگ تو منع بھی کر رہے تھے ان کو جناح صاحب کو, اور نہرو اور گاندھی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جو انڈیا کا پو یونائٹڈ انڈیا کا جو فرسٹ پرائم منسٹر ہوئے گا یا گورنر جنرل ہوئے گا وہ آپ بن جانا, آپ بن جانا, ہم نہیں بنیں گے, تو یہ ڈویژن مت کرو. تو وہ پھر کیوں چڑے, کیوں اتنا اڑ گئے اس بات کے اوپر نا, تو وہ اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک تو یہ میرے کزن نے کہا کہ رولے والی زمین کیوں تو سی گئی, لیکن اصل میں وہ ہوا یہ اس وقت کہ جناح صاحب تو آپ کو پتا ہے روٹ ووٹ کے چلے گئے تھے, انگلینڈ چلے گئے تھے, انہوں نے تو کہا کہ تم لوگوں کی جو پالیٹکس ہے وہ اتنی خراب ہے کہ میں رہنا نہیں چاہتا. تو جب وہ واپس آئے تو اکارڈنگ ٹو کچھ برٹش ہسٹورین ان کے جو آس پاس لوگ تھے نا دے ور آل بڑے کریم تھی, وہ ساری کریم تھی, وہ ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے, بڑے اچھے تھے, سیلف لیس تھے, خاص طور پہ جو بنگلہ دیش اب بن گیا نا وہ جو کیونکہ مسلم لیگ تو بنی بنگال میں تھی, تو وہ جو ان کے ساتھ سارے لوگ تھے ایسٹ پاکستان جو بن گیا, تو وہ کہتے تھے کہ شاید ساری ہماری جو جنتا ہے وہ ایسی ہی ہے, تو یہ ان سے
حالانکہ ٹو نیشن تھیوری قائد اعظم کی واز ایبسولوٹلی رائٹ.
یہ تو یہ سر سید احمد خان نے
مطلب کہنے کے جس پر کام کیا, جس پہ پاکستان بنا ایسے کر دیتے ہیں, جس پہ پاکستان بنا
ٹو نیشن تھیوری, ٹو نیشن تھیوری
تو وہ تو آپ کہہ لیں کہ 100%, لیکن وہ جو آپ بات بتا رہی ہیں نا بندہ جج کرنے میں,
ان کو پتا نہیں تھا کہ قوم کیسی ہے,
کیونکہ انہیں ایک بات کو ایک اور بات کو بھی سمجھنا چاہیے, نتھنگ آف اینڈ, کیونکہ پی فور پاکستان ہے تو باقی سب بکار ہے.
ویسے بھی ہم تو ہیں اس میں خام خواہ اس میں
میں کہتا ہوں صرف پی فور پاکستان ہے باقی سب بیکار ہے, تو پی سے جو بھی صوبہ آتا ہے وہ پاکستان ہے,
بس وہ سارے ہی صوبوں کو سمجھنا چاہیے نا کہ ہم پی ہیں بھائی, تو
نہیں تو آتا ہی نہیں ان کے اس میں پی, وہ بیچارے کیا کریں گے, خیبر تو پختونخواہ تو تھا اچھا خاصا وہ پہلے, لیکن خیبر لگا دیا تو پھر وہ پی ہٹ گیا.
نہیں خیبر پختونخواہ ہے نا تو پی تو ہے,
نہیں وہ پہلا نہیں ہے نا پی اور پاکستان,
لیکن ہے کسی صورت میں تو پی ہے نا, تو بس وہی ہے کہ
پی کو اگر سمجھ لیں گے نا لوگ اس پی سے ہی ساری کہانی نکلتی ہے,
ساری کہانی نکلے,
لیکن کوئی پی کو سمجھنے والا نہیں ہے,
بس پی کے پڑے ہوئے ہیں نا اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے,
تو وہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے, لیکن بہرحال کافی جو ہے تبدیلیاں پاکستان میں, ماحول چینج بھی ہو رہا ہے,
چینج ہو رہا ہے کافی,
لیکن سختیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں,
بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن یہ جو عرفہ وجی کو ابھی وہ کسی بندے نے بھیجا کہ یہ بند ہے یہ بند ہے, ایسا بھی کوئی ظلم نہیں ہے, میری فیملی میں ایک شادی وہاں پہ چل رہی ہے, سارے روڈیں کھلی ہوئی ہیں, ساری چیزیں, کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے, ویسے انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے, مجھے ابھی 50,000 پاکستان سے میسجز کیسے آئے ہیں, اگر انٹرنیٹ بند ہے تو مجھے کزنز کے میسجز کیسے آئے ہیں,
بند ہو جائے گا, نہیں وہ جو ہمارے ساتھ ہمارے محمد علی جو کورسپونڈنٹ تھے یہ بات کے, انہوں نے کہا کہ ابھی وہ شارک آئی نہیں ہے, لیکن 23 تاریخ تک 24 سے مطلب 24 سے پہلے وہ شارک آ کے انٹرنیٹ کاٹ دے گی, کٹ جائے گا,
تو ابھی تک تو سارا کچھ چل رہا ہے,
ابھی تک تو چل رہا ہے,
چل رہا
ہے, کچھ چیزیں بند ہو
رہی ہیں, اور ہاں نہیں اگر آپ اسلام آباد ٹریفک پولیس کی اگر ویب سائٹ پہ دیکھیں گے تو 23 کی رات سے یہ ساری جو بندشیں ہیں یہ شروع ہوئیں گی, اس سے پہلے نہیں, یعنی کہ آج جو 22nd ہے آج نہیں ہے,
تیز ہو گئی نا شروع,
صبح ابھی تو سحری چل رہی ہے نا وہاں پہ, وہاں پہ تو دو تین بجے ہوئے ہیں نا وہاں پہ, تو دن کا وقت سارا صحیح رہے گی, رات سے جو ہے رات
سے 23 تاریخ کی شام سے بند کرنا شروع کر دیں گے, 23
کی شام سے بند کریں گے اور کچھ علاقوں میں کریں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ اب سندھ میں تو کچھ نہیں ہو رہا تو سندھ میں بھی بند کر دیا, نہیں ایسا نہیں ہو رہا نا,
نہیں سندھ میں, حالانکہ سندھ میں جو کیا ہے, جو میری بات ہوتی ہے پاکستان میں, ابھی کئی لوگوں سے بات,
روڈ بند کیے ہیں,
روڈ انہوں نے ابھی جو یہ تو چل ہی رہا ہے, اس کے ساتھ شاید جی جو ایئرپورٹ ہے اس کو ریڈ زون میں ڈال دیا ہے, خاص کر جب سے چینیوں کے ساتھ ہوا ہے, ایون اب یہ حالات ہیں, میری پرسوں ہی بات ہوئی کہ اب چاہے کوئی چھوڑنے جا رہا ہے یا لینے جا رہا ہے, اس کے پاس ٹکٹس اور ساری جو پیسنجر اس کے پاس جو ہے اتنی سختی کر دی ہے,
گجنی بھائی جان
آپ ہماری آپ کی سٹوری نہیں سنتے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں گے, کہ اسے ریڈ زون میں ڈال کے بہت ہی سختی کر دی, ابھی دو تین لوگ جو ہے پاکستان ہمارے ریلیٹو کوئی پہنچے تو وہ بےچارے اندر لے آنے دیا ان کو, کیونکہ ان کے پاس وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ نہیں تھا,
ٹکٹس بھی نہیں تھے, انہوں نے ریسٹرکٹ بھی کر دیا کہ بہت سارے اب 10 لوگ نہیں جا سکتے,
ریڈ زون ہو گیا,
تو اب ایک دو بندے ہی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں,
وہ بہرحال حالات جو ہیں کراچی, اور کراچی میں ایک اور چیز کافی جو
آج روڈز بند ہیں, ساری
خبریں جو آ رہی تھی وہ چیف صاحب جو ہیں وہ اللہ حافظ جس کو حافظ صاحب ہمارے جو ہیں وہ جو ہے کاروباری شخصیت سے دوسری بار ملے, یعنی پچھلے سال بھی ملے تھے, اور آج جو شکایتیں ان کو کی ہیں آپ سوچیں, مطلب دیکھیں وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یار جب काबीना की मीटिंग्स हो रही होती हैं या वो जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही होती हैं तो उसमें जो है वो आर्मी ऑफिसर्स बैठे होते हैं तो देखे वो क्यों बैठते हैं, वो इसलिए कि आज जितने भी कराची के बड़े बड़े टाइकॉन्स जो है वो पहुंचे हुए थे बात करने के लिए चीफ साहब से। वो कहते हैं जी जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी जंत्रियां, उनकी होशियारियां, उनके कब्जे प्लॉट और उनकी करप्शन जो है वो जिस तरीके से चल रही है हम इस माहौल में कारोबार नहीं कर सकते।
हाँ, नहीं कर सकते तो फिर अब इसमें
तो अब वो क्या
अब इसमें अब इसमें
जब चौकीदारी चोर हो।
हाँ, हाँ, तो आपके जो जनरल साहब का क्या कसूर है अगर सियासतदान जो है सियासतदान स्पेस दे रहे ना, ये आपका पॉलिटिशियन स्पेस।
अगर ये वो कहते हैं 15 साल से सिंध गवर्नमेंट एक ही पार्टी के पास है
बीबीबी
और वो जो है इस काबिल ही नहीं कर पा रही कि हमें जो है वो एक माहौल क्रिएट करके दे जिसपे हम कारोबार कर सके,
तो स्पेस तो शिकायत किससे
कर रहे हैं? वो चीफ साहब से कर रहे हैं, डंडा ना चलाएं। हाँ, तो फिर कहते हैं जी डिक्टेटरशिप आ गई है।
हाँ, तो आप जो है आप मिलिट्री को खुद ही स्पेस देते हैं ना,
स्पेस,
तो
दे रहे
स्पेस सही नहीं करते।
हमेशा मैंने ये कहा कि ठीक है कई लोग खराब हो सकते हैं आर्मी में भी, लेकिन ये पॉलिटिशियंस ही हैं जिन्होंने अपने कारनामे पूरे नहीं किए जिसकी वजह से।
लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि अब जैसे सिक्योरिटी की या दूसरी मीटिंग्स हो रही है या और कोई पार्लियामेंट की मीटिंग हो रही है तो अब ये भी ना करें ना कि हर मीटिंग में चीफ साहब को बुला
दें। जरूरी होता है ना शादी, जब बच्चे जब बिगड़ जाते हैं ना तो उनके लिए बाप की मौजूदगी हर वक्त जरूरी हो जाती है। तो बच्चे टाइम पे काम ही नहीं कर रहे, कुछ लोग CW नहीं करते, कुछ लोग HW नहीं करते, तो बाप का होना जरूरी होता है।
तो बस उसको खुद आपने बाप बना लिया है ना, अब अपना तो अब अपने बाप बना लिया है तो फिर आपकी वो हर चीज में इंटरफेयर करेगा।
आप देखें वो चीफ साहब ने कहा कि जिस तरीके से वो मतलब इकोनॉमी के मामलात में आर्मी चीफ आपका एक्टिव हुआ हुआ है और वो कहते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि वो बकौल उनके आज कराची में उनसे बात की सब ताजिरों से भी, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्त में, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आर्मी चीफ साहब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सिंगल डिजिट जो है इन्फ्लेशन पर हम इंशाल्लाह जो है वो इंटरेस्ट रेट को ले आएंगे। मैं कहा ठीक है जी आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ये आपके सियासतदानों में या किसी और में उनमें उनका ये फोरकास्टिंग ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है या उनको पता ही नहीं है, तो ठीक है जी जनाब फिर आप पार्टी करें
क्योंकि जो इंटेलिजेंस
आप आईलैंड ढूंढें क्योंकि वो अब तो जिलावर्ती करनी पड़ेगी
क्योंकि जो
बैंक्रप्सी हो गई है,
इंटेलिजेंस एजेंसियों में बैठे उनके पास इंटेलिजेंस तो है नहीं, तो अब वो चीजें कैसे इंटेलिजेंट निकलाएंगे है ना। आपका ली बात विजन नहीं है उनके पास, विजन नहीं है,
विजन के लिए आपको गॉगल्स चाहिए होते हैं
सिर्फ उनके पास सिर्फ टेलीविजन है,
उनके पास टेलीविजन है सारा दिन बैठ के नीले,
दूसरा विजन नहीं है,
नहीं विजन के लिए आपको गॉगल्स चाहिए।
हाँ गागले
गॉगल्स आप खरीदेंगे
वो गागले आपके पास,
बहुत मतलब दिल दुखता है इस बात में कि मतलब एक ऐसा मुल्क जिसके पास इतना पोटेंशियल हो और वहाँ के एक अच्छा लीडर नहीं पैदा कर सकते।
आपको मैं बताऊँ लोग मेरे पे बड़ा हंसते हैं, ये मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान बहुत इजीली $1 trillion इकोनॉमी बन सकता है, बहुत इजीली।
जी कुछ मसला ही नहीं है,
कोई मसला नहीं है, कोई क्योंकि जिस कौम की जो ह्यूमन कैपिटल इतनी इंटेलिजेंट हो ना, आप दुनिया में इतनी इंटेलिजेंट ह्यूमन कैपिटल बहुत कम देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, बहुत कम यंगस्टर हैं, काबिल हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। $1 trillion इकोनॉमी आपकी, आपने सिर्फ सीधे रास्ते पे चलना है जापानियों की तरह, मुंह पे उंगली रख के काम करना है सिर्फ, बस दैट्स इट। आपने अगर 10 साल काम कर लिया, ये लड़ाई झगड़े हंगामे बदतमीजियां खत्म करके सिर्फ आपने ये सोच लिया कि अब हमने काम करना है, कोई मुल्क का पैसा नहीं लूटना, किसी को लूटना, कब्जे ग्रुप नहीं बनाने, ये टेररिज्म नहीं करनी, चार पैसे चार डॉलर लेके सानू देखो $1 million कोई नहीं दे रहे हैं उसी कोई मतलब टेररिज्म कर रहे हैं,
देखो $1 million के अलावा फील लाइक शाहरुख खान
तो एग्जैक्टली
नो टेंशन।
अगर हर आदमी ये सोच ले
सोच नहीं रहे, फिर शादी जी मसला है कि हमारी मेमोरी वो शॉर्ट जैसा आप मुझे कहती है ना गजनी, बेसिकली पूरी पाकिस्तानी कौम
गजनी,
सियासतदान तमाम रिपोर्टर तमाम जर्नलिस्ट तमाम मीडिया इदारे भी पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, मैं आपको छोड़ के देखें आप कनाडा में, मैंने पाकिस्तान का बड़े
सब
गजनी है। अभी बात हो रही है थोड़ी देर पहले, बहुत रिस्पेक्ट छोटे भाइयों की तरह जी, वो इतना बड़ा चला के जी वो ये बंद हो रहा है फला बंद हो रहा है, अमीर गंडापुर जो है वो कफन सर पे भजन, ये वो भी टाइम था जब गुल्लू भट्ट साहब जो है फायरिंग करते फिर रहे थे, औरतों पर गोलियां चलाई जा रही थी, ये मुल्क में नया नहीं है, मतलब आई एम 45 राइट नाउ ना, मतलब मैं इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं, मतलब तो फरवरी में हो जाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो ये हम बचपन से देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है पाकिस्तानी सियासत में कि यार ट्रक ट्रॉलर लग रहे हैं ट्रक्स लग रहे हैं, हम कराची में भी देख चुके हैं।
लेकिन जो एक नया फिनोमेना सिर्फ अब आया ना, अब
मुझे तो नया कुछ नहीं लगता,
नहीं 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 पिछले 2-3 साल में नया जो आया ना वो ये कि बेटियों को बच्चियों को औरतों की बेहरमती करना उन पे हाई डालना,
ये तो सामने वाली पार्टी कर रही है ना, यानी जो हुकूमती इदारे हैं, लेकिन ये जलसे जुलूस मार देखें उस वक्त जब गवर्नमेंट इनकी थी और जो आपको मैं ताहिर कादरी साहब वाला जो वाकया हुआ, वो हमारे सामने हमने औरतों को गोलियां खाते हुए लोगों को मरते हुए सड़कों पे देखा है, तो ये सब चीजें नई नहीं है क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, तीन दिन चार दिन के बाद हम तो सब भूल जाते हैं कि पीछे क्या हुआ था। तो ये सब चीजें हमारी तारीख का हिस्सा है। आज मैं नथिंग फेवर विद पीटीआई, एहतजाज करना उनका हक है, लेकिन देखें एहतजाज करने वाले को जब आप सामने दीवार खड़ी करेंगे तो वो क्लैश जब पैदा होता है, आप बोलो भाई आ जाओ ठीक है करो, खामोशी से बैठो, चार दिन बैठो, पांच दिन बैठो, बैठो खाओ पियो जलसे करो तकरीरें करो, ये है
लेकिन पीसफुली करते रहो।
जब वो वायलेट करें किसी चीज को
तो फिर आप एक्शन ले, आप एक्शन ले, ऐसे नहीं
आप पहले से, और ये हमेशा होता रहा, फायरिंग हो रही है, आठ दस बंदा तो ऐसे मर जाता है जैसे कि ग्लूकोज की बोतलें पी ली, चलो बेहोश हो गए थे, नहीं भाई बंदा मर गया यार, उसकी कोई वैल्यू थी, परवाही नहीं है किसी को।
और जो सबसे बड़ी बात है वही जो मैंने कल भी कहा था कि पिछले 60 डेज में कोई हजारों ही जो लोग मर गए हैं, सैकड़ों लोग कह लें आप लोग मर गए हैं, कितने टेररिस्ट अटैक हो गए, भाई आपका तो आंखें उस तरफ होनी चाहिए कि भाई मुल्क में कॉन्स्टेंटली ये इतना ज्यादा टेररिज्म कैसे बढ़ गया, ये कहां से लोग आ गए हैं, किधर से आ रहे हैं, कोई आप एक अपना सैटेलाइट सेंटर बनाओ, आपके जो इंटेलिजेंस में लोग बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्यों इंटेलिजेंस पहले से नहीं है।
सैड सिचुएशन।
फिर आप कह रहे हैं जी कि दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई हमारे पास है, तो फिर वो आईएसआई वालों को डिसबैंड करो भाई, क्योंकि इंतहाई नालायक वो लोग हैं, क्योंकि उनसे तो पकड़े जा नहीं रहे हैं ये, उनको समझ नहीं आ रही है।
पकड़े जाते हैं लोग, मैं आपको बताऊं, यकीन करें
जिस वक्त हमला हो जाता है उस वक्त
क्योंकि चीज शायद जी बहुत बड़ा मुल्क है,
इंडिया से बड़ा है?
नहीं इंडिया देखें बात जो हमें चैलेंजेस है ना वो इंडिया में नहीं है, और इंडिया में भी ऐसे कई चीजें होती हैं, आप रिपोर्टें आप भी करती हैं,
नक्सलवादी कर रहे हैं, मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है,
भी होता है, लेकिन
पंजाब में क्या
बात कर रहा हूँ ना कि हमारा जो टीवी चैनल है जो मीडिया है वो इतना उसमें मिर्च मसाला लगा के चीजों को बताता है, यकीन करें कि वो
कल तो मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है, रेप्स कितने हैं,
फिर इंडिया इंडिया नहीं करता, इंडिया में भी होता है, हम यहाँ जैसे ये 40 मिलियन की आबादी के मुल्क में आप CP24 खोल लें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की खबरें इंग्लिश में
है, बिल्कुल इतना क्राइम
है यहाँ, ये असॉल्ट हो रहा है चीना जब अब तो दिन वो 410 पे परसों खबर जब आ रही थी 410 पे हाईवे पे एक गाड़ी को टक्कर मार के जो है वो रॉबरी कर ली, 40 मिलियन के मुल्क में
पॉपुलेशन,
तो आप सोचें पाकिस्तान 25 करोड़ तो आबादी होगी अगर आप सही से सेंसस करवा लें 23-25 करोड़ के आसपास, उसमें फिर प्रॉब्लम का आ रही है कि वो एक तो करप्शन आ गई, फिर जो पुलिस है वो पुलिस को सब खबरें होती है, लेकिन जाहिर है करप्शन आ गई है उनको, दे डोंट केयर, अब वो कहते हैं ना कि ये वो निशानियां हैं कि मारने वाले को नहीं पता क्यों मर रहे हैं, और जो मार रहा है उसको भी नहीं पता मैं क्यों मार रहा हूँ, न मरने वाले को पता है न मारने वाले को पता है, लेकिन मरे जा रहे हैं सब, मारे जा रहे हैं भाई।
अच्छा जनाब, कल जो मैंने अदानी साहब की आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाई थी उसके बाद फिर मेरे जो चार एडमायरर हैं उनके चार मैसेजेस आए थे कि शाजिया जी कुछ और भी थोड़ा हमें बताएं। अच्छा मैं आज आपको थोड़ा सा और बताऊंगी अदानी साहब के बारे में, कल भी मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, आज थोड़ा सा और बताऊंगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम आपको पूरी अदानी साहब की हिस्ट्री नहीं सुना सकेंगे, लेकिन इससे आपको अंदाजा होगा कि क्या होगा। अच्छा एक साहब जो है उन्होंने मुझे मैसेज लेके पूछा हूं की होगा अदानी साहब का, सर कुछ भी नहीं होगा अदानी साहब के साथ, अदानी साहब इतना बड़ा जो है वो एक जो है एनाकोंडा है कि उनको पकड़ना अब मुश्किल हो गया है, उनको खुद इंडियन गवर्नमेंट के लिए पकड़ना जो है अब मुश्किल हो गया। मैं आज आपको उनकी बताऊंगी उनकी इन्वेस्टमेंट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स है, यानी आप सोचें कि कल जिस वक्त ये स्कैंडल्स आए हैं दुनिया के 22nd रिचेस्ट मैन थे, कल जिस वक्त ये रिपोर्ट आई है तो उससे क्या पता, उससे क्या लगा कि दुनिया के कोई 100वें बड़े, नहीं दुनिया के अभी भी 25वें बड़े अमीर तरीन बंदे हैं। इसलिए जैसे कि मैंने उस दिन वो धारवी का आपको बताया था 20,000 करोड़ उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा जी मुझे दो ये मैं करूंगा, अमेरिकन गवर्नमेंट को कह रहे हैं 10 बिलियन US डॉलर में अमरीका में इन्वेस्ट करूंगा, इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि मैं इसी तरह 20 या 30 बिलियन में इंडिया में करूंगा, दुनिया सारी में बिलियंस की उन्होंने, तो वो इतना बड़ा वो एनाकोंडा है कि उनको कोई आप संभाल नहीं अब सकते, ही हैज बिकम ह्यूज। तो इसलिए अगर आप सोचते हैं जी कि कुछ होएगा उनके साथ, कुछ भी नहीं होएगा, बल्कि कल जिस वक्त वो सारी आई तो थोड़ी देर के लिए उनके स्टॉक एक्सचेंज गिरे थे और अब उसके यानी कि शेयर्स, और अब उनके फिर से आज 6% ऊपर चले गए हैं। तो इसलिए पायान खुश रहो, अदानी साहब का कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, और ठीक है सीरियस है वहां पे जो आई हैं, लेकिन ट्रंप साहब के आने के बाद सारी चीजें हो सकता है कि ये सब खत्म हो जाए। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट बड़ा ही प्रेस्टिजियस है, स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है उनका जो लॉ उनकी जो है वो उसमें बड़े सख्त हैं, उसके ऊपर उनकी बड़ी इज्जत है, उन लोगों की जो ज्यूरिस्ट हैं वो कभी किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होगा अदानी साहब के साथ। अच्छा जनाब, हम खबरें शुरू करते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बाजा जी। राजा बाजा का नंबर है 6472903773। अगर आपको भी अफोर्डेबल होम एंड ऑटो इंश्योरेंस चाहिए तो आप राजा बाजा जी से कनेक्ट करें। और चोपड़ा ज्वेलर्स, वो कहते हैं जी जबरदस्त हमारे पास ज्वेलरी है और एलिगेंट, ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, और अगर आपके घर में कोई भी इवेंट है तो आप इनको कॉल करके जा सकते हैं और इनसे बड़ी जबरदस्त ज्वेलरी ले सकते हैं। इनका नंबर है 4167447534। और जनाब, उम्रे के पैकेजेस आपको चाहिए तो आप जो है कॉल कर लें इनको, अल हबीब वालों को। अल हबीब ट्रैवल का नंबर है 9055547786। जबरदस्त किस्म के जो है वो कहते हैं जी पैकेजेस हैं, अर्ली बर्ड स्पेशल्स हैं, जो फर्स्ट 20 कस्टमर्स हैं उनको जो है वीजे भी दिए जाएंगे। और जनाब, साढ़े मुल्तानी सोन हलवे वाले कहते हैं जी खाओ बे मौज करो, गम ना करो, हैं जी। तो इनका नंबर है 4162704439। आप ऑनलाइन भी जाके मुल्तानी हलवा डिलाइट्स पे अपने ऑर्डर डाल सकते हैं। जबरदस्त किस्म का ऑथेंटिक मुल्तानी जो है हलवा यहां पे बनाते हैं। और जनाब, सर्दियां आ गई हैं तो स्पीयर एंड मके पे जाएं, वो नई लोकेशन पे आ गए हैं। जबरदस्त किस्म के उनके पास कपड़े हैं और ना फटेंगे, ना टूटेंगे, ना खराब होएंगे, ना उनका रंग जाएगा। थोड़े से शायद आपको एक्सपेंसिव लगे जैसे मैं आपको कहती हूं, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है वो आपको उसका फायदा रहेगा। 775 ब्रिटानिया रोड वेस्ट, यूनिट 7B, मिसिसागा में है। इनका नंबर है 9056703388। तो अगर आपको अच्छे क्वालिटी के कपड़े चाहिए, मतलब है बकवास टाइप नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं स्पीयर एंड मके पे, ठीक है जी। अच्छा जनाब, ऑन्टेरियो गवर्नमेंट जो है उसका फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक अग्रीमेंट हो गया है एट द ट्यून ऑफ $108.5 मिलियन, जो कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स ये फंड करेंगे स्कूल फूड प्रोग्राम के लिए। आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले ट्रूडो साहब ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। फैमिली, किड्स एंड सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर जेना सड्स ने आज इसकी अनाउंसमेंट जो है ट्रूडो के अंदर की है। उन्होंने कहा जी कि इस पैसे से 160,000 ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑन्टेरियो के अंदर मील्स दिए जा सकेंगे और ये जो मील्स हैं 9.8 मिलियन मील्स पर ईयर दिए जाएंगे। जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर 15.76 मिलियन फेडरल फंडिंग जो है वो जाएगी ऑन्टेरियो स्टूडेंट न्यूट्रिशन फंड के लिए। 2.78 टू ऑन्टेरियो फर्स्ट नेशन स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन प्रोग्राम इन स्प्रिंग। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो $1 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स स्पेंड करेगी इन द नेशनल स्कूल फूड प्रोग्राम और इसमें जो डिलीवर किए जाएंगे मील्स 400,000 मोर किड्स पर ईयर। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड साहब ने कहा कि यस, मैं बड़ा खुश हूं, हमारी बातचीत जो है बड़े अरसे से फेड्स के साथ चल रही थी। इन सितंबर न्यूफाउंडलैंड जो था दैट बिकेम द फर्स्ट प्रोविंस टू साइन डील विद फेड्स। $9.1 मिलियन उसको 3 ईयर्स के लिए दिए गए थे टू केटर फॉर 4,000 स्टूडेंट्स। मैनिटोबा को दिए गए थे 17 मिलियन फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स जिसमें कि वो फूड देंगे 19,000 किड्स को। फेडरल जो डील है प्रोविंसेस के साथ वो कहते हैं जी कि हम इसको बढ़ा रहे हैं टू फीड 183,000 किड्स पर, यानी कि ये इसमें लंच दिया जाएगा जो बच्चों को जब वो स्कूल में होते हैं। तो गोल है कैनेडियन गवर्नमेंट का 400,000 मोर चिल्ड्रन जो हैं उनको ये मील्स दिए जाएं और ये फंड्स जो हैं ऑन्टेरियो के पास जो हैं अब आएंगे 13 जो लीड एजेंसीज हैं उनके थ्रू ये पैसा जो है फेडरल गवर्नमेंट का ऑन्टेरियो गवर्नमेंट के पास आएगा। ये जो ईराज टूर आ रहा है जी टेलर स्विफ्ट का, उसके अंदर जो है बेतहाशा ये टिकट का फ्रॉड चल रहा है जो इनके जो कॉन्सर्ट्स के हो रहे हैं और उसके अंदर रीसेल किए जा रहे हैं टिकट्स जिसके ऊपर लोगों का बहुत ज्यादा एतराज है। ब्रायन मेसी जो एनडीपी के क्रिटिक हैं उन्होंने कहा जी कि फैमिलीज जो है अपने पैसे बचा रही हैं एंड दे आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो गो टू दिस कॉन्सर्ट, लेकिन उनको इस प्रोसेस से शट आउट किया जा रहा है। उन्होंने एक लेटर लिखा है फिलिप शैम्पेन को जो कि मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन है और उनको कहा जी कि ये जो प्राइस गाउजिंग हो रही है इसके ऊपर आप देखें बिना वजह जो है ये टिकट मास्टर को देखें ये क्यों, और जो टिकटिंग इंडस्ट्री है वो इतना बेतहाशा ये रीसेल इतने हाई प्राइसेस पे क्यों कर रहा है। एक फेडरल ग्रीन पार्टी के जो एमपी हैं उन्होंने तो कहा जी कि मैंने एक साइट देखी है, आमिर जरा सुनना, टेलर स्विफ्ट का एक टिकट जो है $13,000 का बिक रहा है वो उस साइट के ऊपर और लोग खरीद रहे हैं उसको। ٹھیک ہے جی. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ اتنا زیادہ ظلم لوگوں کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے. اب آپ کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ آپ کو ہنسی آئے گی, لیکن کینیڈا جیسے غریب ملک کے لیے 13,000 بہت ہے, امریکہ جیسے ملکوں میں تو لاکھ لاکھ ڈالر کے بھی بکتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں جی یہ بہت زیادتی ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ پورچوگل اور ڈینمارک کے اندر تو آپ ری سیل ٹکٹس کو اوریجنل پرائز سے بہت زیادہ پے نہیں کر سکتے. جرمنی کے اندر تو ایک کلاز آتی ہے جب آپ کوئی کانسرٹ یا اس طرح کرانا شروع کرتے ہیں کہ 25% سے زیادہ کا جو فیس ویلیو ہے اس پہ آپ ری سیل نہیں کر سکتے. فرانس کے اندر بالکل ان آتھرائز ہے کہ ری سیلنگ کی جائے, اور بلکہ جو ہے 30,000 فرینک کے فائنز بھی لوگوں کو دیے جاتے ہیں. تو اس پہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اونٹاریو کے اندر جی, اور ویسے کینیڈا میں بھی میزلز کے جو کیسز ہیں بے تحاشا بڑھ رہے ہیں. 30 new measles کیسز جو ہیں رپورٹ کیے گئے ہیں کینیڈا میں اسی جو ہے ویک میں, موسٹلی جو ہے ان میں سے نیو برنزوک میں آئے ہیں, اور آل ٹوگیدر ابھی تک جو ہے کاؤنٹ فرام دا بگننگ آف دا ایئر 130 کیسز آ چکے ہیں, وچ از اے جمپ فرام 12 ان 2023. یہ جو ہے دس از دا ہائیسٹ نمبر سنس 2015. ڈیٹا جو ٹریک کیا گیا ہے نومبر 3 سے 9 کے بیچ میں, اس میں آیا ہے کہ جی 44 کیسز فریڈرنگٹن میں ہیں, اپر سینٹ جان ریور ویلی ایریا میں بھی, نیو برنزوک جو ہے وہاں پہ تو جو کیسز آئے ہیں وہ دے آر لنک ٹو انٹرنیشنل ٹریول, لیکن یہ بھی آیا کہ وہ لوگ امیونائز بھی نہیں تھے. اونٹاریو میں 34 کیسز ہیں, کیوبیک میں 53, البرٹا سسکیچون اور بی سی میں ایک ایک, اور آل ٹوگیدر جو تھے 113 کیسز 2019 میں تھے, اور اب دیکھیں یہ جمپ ہو کے جو ہیں کتنے ہو گئے ہیں. تو میزلز جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں, تو پلیز بچو جتنا بچ سکتے ہو. یو ایس سینٹ جو ہے اس کے اندر آج ایک ریزولوشن لائی گئی تھی کچھ سینیٹرز کی طرف سے کہ یہ جو سیل کیے جا رہے ہیں ویپنز بہت سارے اسرائیل کو, اس کو روکا جائے. برنی سینڈرز جو ہیں انہوں نے یہ ریزولوشن انٹروڈیوس کرائی تھی, جوائنٹ ریزولوشن آف ڈس اپروول. سب سے پہلے تو وہ سپٹمبر میں لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 20 بلین یو ایس ڈالرز کا آرمز ڈیل کیوں بنائے ہوئے ہیں اسرائیل کے ساتھ جبکہ وہ اتنا غازہ کے اندر ظلم کر رہا ہے. برنی سینڈرز کے ساتھ دوسرے سینیٹرز جو تھے پیٹر ویلش, جیف میکلے, کرس وین ہالن, ٹم کنگ, برائن شاٹس جو تھے وہ تھے, اور انہوں نے جو ہے بہرحال یہ جو ریزولوشن تھی یہ ڈیفیٹ ہو گئی. صرف 18 ووٹس حق میں آئے, 79 جو ہے وہ اپوزنگ میں آئے. اسی طرح بائیڈن صاحب نے آج انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی بہت زیادہ کھینچا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے نتن یاہو کے لیے اریسٹ وارنٹس نکالے ہیں یہ بالکل آؤٹ ریجس ہیں. اب اسی موقع پہ جب یہ ہو رہی تھی ووٹنگ اسرائیل کے لیے, تو یو ایس سینیٹر جو کرس وان ہالن ہے انہوں نے بھی ایک اور دوسری ریجسلیشن وہ لے کر آئے کہ جی ہم کو چلو ہم اس کو تو منع نہیں کر سکے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا دیں, لیکن آرمز ہم کو یو اے ای کو بالکل روک دینے چاہیے کیونکہ وہ جو ہیں کر رہے ہیں آرم کر رہے ہیں پیرا ملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کو سوڈان میں, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ سوڈان نے اس طرح کے الیگیشنز بھی یو اے ای کے اوپر لگائے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ یو ایس کے بہت قریبی اب تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ, اور ان کو لگتا ہے کہ ریجنل سیکیورٹی کے لیے یہ ہمارا بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے, تو اس کے اوپر ہم سختی نہیں کریں گے کیونکہ ظاہر ہے جی کہ جو رولرز ہوتے ہیں ان کی پالیسیز جو ہوتی ہیں نا اس کے اوپر سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. یو اے ای نے بڑی ساری دنیا سے دوستیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں, لڑائی کسی کے ساتھ نہیں ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ اس کو بڑا فیوریبل لائٹ میں یو اے ای کو دیکھا جاتا ہے. آج انگلینڈ کے اندر بہت زیادہ سکیئر رہا دو تین چیزوں کے لیے. آج لندن پولیس جو ہے اس کو ایک تو ملا کچھ ایک پیکج یو ایس امبیسی کے باہر, اور پھر انہوں نے اس کو ڈیفیوز کیا تو ایک کنٹرولڈ ایکسپلوژن انہوں نے کیا, اور اس کے بارے میں انہوں نے اعلان بھی کیا تھا, علاقے کو خالی کیا, اور انہوں نے کہا جی ہم خود سے یہ ایکسپلوژن کر رہے ہیں. اور یہ جو تھا دس واز نیئر یو ایس امبیسی کا جو کمپاؤنڈ تھا آن دا ساؤتھ سائڈ آف تھیمز ریور ان انگلینڈز نائن ایلمز جو نیبرہڈ ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو گیٹوک ساؤتھ ٹرمینل ہے وہاں سے بھی پیسنجرز کو فوراً نکالا گیا کیونکہ وہاں پہ بھی پتا چلا کہ ایک سیکیورٹی الرٹ آیا اور شاید کوئی بامب سکیئر ہے. تھاؤزنڈز آف جو لوگ تھے ان کو وہاں پہ نکالا گیا, لوگوں کو 4 گھنٹے تک ٹرمینل کے اوپر انتظار کرنا پڑا کیونکہ بامب ڈسپوزیبل ایکسپرٹس جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے اس کو, اور پھر ان کو ایک لگیج ایریا میں ایک سسپیکٹڈ آئٹم ملا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے سارے ایریا کو سینیٹائزیشن کی اور پھر لوگوں کو بولا کہ جی آپ آ سکتے ہیں. تو لیکن اتنی بے تحاشا آج لندن میں سردی تھی وہاں پہ گیٹوک کے اندر کہ جب لوگوں کو ٹرمینل سے باہر نکالا تو لوگوں کے پاس اتنے جو ہے موٹے کپڑے بھی نہیں تھے, تو پھر ان کو جو ہے فوائل بلینکٹس دیے گئے کیونکہ ٹیمپریچرز جو تھے وہ اباو فریزنگ تھے. तो ये जनाब दो बहुत बड़े वाक्य जो हैं आज इंग्लैंड के अंदर हुए हैं। बेल्जियम ने जनाब आज अनाउंस किया है कि जितने इलीगल मोरक्कन्स हैं उनके मुल्क में आए हुए उन सबको वो निकाल रहे हैं। अभी तक 2024 में 203 जो मोरक्कन्स हैं उनको वो वापस मोरक्को भेज चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी कि हमने एक डील साइन की थी मोरक्को से कि कोई भी अगर इलीगली हमारे मुल्क में आएगा और जो है कोई प्रॉब्लम्स पैदा करने की कोशिश करेगा तो हम आपको वो आपके बंदे वापस भेजेंगे। वो कहते हैं जी कि हम दोनों कंट्रीज अब बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन माइग्रेशन रिपैट्रिएशन एंड सिक्योरिटी, और जो भी हमारे मुल्क में आए वो लीगली आए। और फिर वो कह रहे हैं जी कि हम जो कोई हमें गलत नजर आएगा उसको कंट्री ऑफ ऑरिजिन में हम भेजेंगे। तो इसके ऊपर आज जाहिर है कि वहां पे बेल्जियम में काफी शोर हंगामा मचा है, लेकिन वो कहते हैं जी नथिंग डूइंग, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। COP29 ये जो क्लाइमेट समिट हो रही थी इसमें भी आज बहुत ज्यादा हंगामे रहे, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने डेवलप्ड नेशंस को बोला कि तुम $250 बिलियन पर ईयर दो बाय 2035 टू डील विद द ये क्लाइमेट क्राइसिस। ये समिट जो है बाकू आजरबाईजान के अंदर हो रही है और इसके अंदर काफी लड़ाई झगड़ा चलता रहा डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बीच में। ये 2 वीक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि ये देखा गया था कि जी क्लाइमेट को के जो इतने चेंजेस हैं उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाता है। ईयू नेगोशिएटर जो है उन्होंने कहा जी कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि कॉस्ट इतनी बेतहाशा हाई है और आपको पता ही है कि ऑलरेडी बहुत सारे कंट्रीज जूझ रहे हैं, उनके अपने जो हैं वो कारोबार ठीक से यानी कि काम वाम ठीक से मुल्क में नहीं चल रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है, जॉब्स नहीं है। ये जो कंट्रीज जिनको के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा वो कॉस्ट एब्जॉर्ब करेंगे ये $250 बिलियन की, उसमें ईयू ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए जापान नॉर्वे कनाडा न्यूजीलैंड एंड स्विट्जरलैंड है। वही वाह वाह क्या बात है, तो इसमें इंडिया का नाम क्यों नहीं है। तो जो है वो तो बहरहाल जी ये वो कहते हैं जी कि ये बिल्कुल कुछ इसके अंदर जो है चीजें आगे नहीं चली हैं। रशिया के बारे में आज साउथ कोरियन ऑफिशियल्स ने बड़े एलिगेशंस लगाए हैं कि रशिया सप्लाई कर रहा है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू नॉर्थ कोरिया इन एक्सचेंज फॉर इट्स ट्रूप्स टू फाइट अगेंस्ट वॉर इन यूक्रेन। उसने कहा जी कि ये जो सारी चीजें रशिया ने दी हैं उसके लिए 10,000 ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया ने रशिया को भेजी हैं जो उसने डिप्लॉय किए हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, और इसमें जो है वो बड़ी एस्केलेशन एस्केलेशन आएगी। मतलब है तुसी अमरीका उसनों मिसाइल दे रहा है, इंग्लैंड दे रहा है, बाकी सारे तुसी दे रहे हो और कह रहे हो जी जाओ रशिया के अंदर मारो तुसी जाके, वो एस्केलेशन नहीं है, एस्केलेशन है ना जनाब, वो भी एस्केलेशन है। तो ये अगर ट्रूप्स मांग लिए तो मतलब है माई वे और द हाई वे, बस ए इनादा है। शेन वॉसिक जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल, उन्होंने कहा जी कि रशिया ने मिसाइल्स और बहुत सारा इक्विपमेंट और एयर डिफेंस नेटवर्क जो है प्योंगयांग को दिया है, इसके अलावा रशिया ने इनको भेजा है S-400 लॉन्ग रेंज सर्फेस टू सर्फेस एयर मिसाइल्स और जो है वो ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स। वो कहते हैं जी कि S-400 मिसाइल्स जो हैं इनकी रेंज 400 किलोमीटर तक है और ये रशिया के मोस्ट एडवांस एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं। तो अब तुसी करो तो सही नहीं है, ये बिल्कुल वही बात है जरा है वे साड़ा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टोमी है तो बस ये वही बात है कि अगर हम आपके खिलाफ मिसाइल यूज करेंगे वो ठीक है, लेकिन आपने हमारे खिलाफ मिसाइल, यानी सारा वक्त इसराइल जो है पैलेस्टीनियंस को थप्पड़ मारे लेकिन अगर एक पैलेस्टीनियन उठ के उसको थप्पड़ मार ले तो वो कसूर जो है वो पैलेस्टीनियन का और वो टेररिस्ट है, इसराइली नहीं है जो है वो पिछले 76 ईयर से वो क्या कर रहे हैं वो नहीं आपको नजर आ, बस अक्टूबर 7 को रोते रहते हो ना आप लोग, तो बस वही है। अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय मोमिन हलाल मीट एंड ग्रोसरी। अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेल लगाई है, वसीम भाई को कॉल कर लें, उनका नंबर है 4168548962, ओपन माइक कफे। वो कहते हैं जी बहुत ही बेताशा मजे के खाने हैं, लेकिन वो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब आप वहां पे जाएंगे और खाएंगे। ये नंबर है जी नाजर शाह साहब का 4165266800। और जनाब हज के पैकेजेस जो हैं ये एमएक्स ट्रैवल वाले भी दे रहे हैं और कह रहे हैं जी बड़े जबरदस्त पैकेजेस हैं, और वो कहते हैं कि ये पैकेजेस जो हैं क्वाड ट्रिपल डबल हैं, तो आपको जिस तरह के भी चाहिए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम पैकेजेस चाहिए तो आप हमारे पास आए तो हम आपको जो है बड़े अच्छे पैकेज बना के देंगे। इसमें हज वीजा और कुर्बानी की फैसिलिटीज भी आपको दी जाएंगी और आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये नंबर है जी 4165995200। ठीक है जनाब, ये आप करें। पाकिस्तान के अंदर जो एक एंटी टेररिस्ट कोर्ट है उसने आज सेंटेंस किया है 10 लोगों को इन्वॉल्व इन मई 9 2023 वायलेंस, और उन्होंने को कहा जी कि इनको 6 साल के लिए जेल में डालो और इनको फाइन भी करो। ये लोग जो हैं इनका नाम है आबिद महमूद, एसन एयाज, नईमुल्ला, मतीउल्ला, शौकत, जकीरुल्ला खान। इसके अंदर 4 अफगान नेशनल्स भी थे, दाऊद खान, यूनुस खान, एहसानुल्ला, लाल आगा। और वो कहते हैं जी कि ये केसेस जो थे ये वैसे तो इनिशियल रजिस्टर किए गए थे 17 सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट, और फिर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, इसमें एक सस्पेक्ट को एक्विट कर दिया था और बाकी 6 जो थे वो एट लार्ज थे, और फिर कोर्ट ने जो थे इशू किए थे इनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स, और अथॉरिटीज को कहा था कि इनको पकड़े और कोर्ट में लेकर आए। तो जनाब ये हुआ। ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई है, उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जी उन्होंने 7 टेररिस्टों को मारा और 2 को इंजर किया इन 4 सेपरेट ऑपरेशंस इन बलूचिस्तान एंड केपी। ये कहते हैं जी कि 3 इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस जो थे हमने बलूचिस्तान के अवारन, देरा बुक्टी, कैच के एरिया में किया और 4 टेररिस्टों को मारा। अवारन में 2 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नियाज अलियास गुमन और जरीफ अलियास शाहजहां जो है उसको मारा। डेरा बुक्टी की और कैच के अंदर 1-1 टेररिस्ट को मारा। केपी के अंदर 3 टेररिस्टों को मारा, 2 को जख्मी किया। वो कहते हैं जी कि ये सारे के सारे इन्वॉल्व थे सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर अटैक करने में और सिविलियंस को मारने में, इनसे आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव रिकवर हुए। इसके साथ साथ कराची में इन्हीं सिक्योरिटी जो मामलात हैं उसके होते हुए आज कराची ट्रैफिक पुलिस ने अनाउंस किया है कि टेम्पररीली रोड क्लोजर्स आ रहे हैं, डायवर्जन्स होंगी शायराए फैसल से और दूसरे भी की रूट्स जो हैं, और 2 AM से 5 AM तक नवंबर 22 से लेकर नवंबर 23 तक जो है ये सिक्योरिटी चेक्स रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने भी आज सिक्योरिटी के मामलों को सामने रखते हुए सेक्शन 144 अनाउंस किया है, और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पंजाब के अंदर किसी किस्म की गैदरिंग, प्रोटेस्ट, रैली, सिटिंग जो है फॉर द नेक्स्ट 3 डेज नहीं किए जा सकते हैं। आज कोर्ट ने जो एंटी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है उसने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स जो हैं बुचरा बीबी के लिए जारी किए हैं फॉर 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस, और कोर्ट ने इस्लामाबाद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को कहा है कि इनको अरेस्ट करें आप और सामने लेकर आए। इसके साथ साथ जो इनके गारंटर थे उनको भी शो कॉज नोटिस जो है उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी कि इनको जो है 2 दफा बुलाया गया था कि आप कोर्ट के आके आंसर दें अंडर सेक्शन 342, और जो है फिर डिसीजन ये उस वक्त लिया गया जब अडियाला जेल में ये हियरिंग इसकी इस रेफरेंस की चल रही थी, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा जो हैं वो कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि बुशरा बीबी को बहुत दफा बुलाया है बट शी हैज फेल्ड टू अपियर इन कोर्ट, क्योंकि वो हमेशा कह देती हैं कि मेडिकल ग्राउंड्स पे मैं नहीं आ सकती हूं, एग्जम्पशन मांगती हैं, लेकिन ये बिल्कुल अब ठीक नहीं है, ये रिपीटेड इनका नॉन जो अपियरेंस है वो नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद हियरिंग जो है नवंबर 26 तक एडजर्न की गई है, लेकिन कोर्ट ने आज अथॉरिटीज को कहा कि बड़ा स्ट्रिक्टली इनको अरेस्ट करें और इनको लेकर आए नेक्स्ट ना जो है वो मीटिंग पे। इमरान खान साहब ने आज डिफेंड किया है अपनी बेगम को, बुशरा बीबी को, और उन्होंने कहा जी कि कहीं पे भी उन्होंने सऊदी अरेबिया का नाम नहीं लिया है, और जो उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज की है उन्होंने कहा जी कि अननेसेसरीली और डिलिबरेटली उसकी जो बातें हैं उसको ट्विस्ट किया जा रहा है ताकि सऊदी अरेबिया के साथ कंट्रोवर्सी पैदा की जा सके। उन्होंने एक जो रेयर वीडियो मैसेज बुशरा बीबी साहिबा ने जो पहले दिया था जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया को कहा था कि वो इन्वॉल्व है खान साहब की गवर्नमेंट के आउस्टर में, उन्होंने कहा जी बीबी ने कहा था उसमें कि जी जिस वक्त मदीना में नंगे पांव जब जा रहे थे खान साहब तो जनरल बाजवा को बार बार फोन आ रहे थे और वो कह रहे थे भाई ये कौन आदमी है, कौन इसको, किसको आपने इधर भेज दिया है, हम इस तरह के पर्सनैलिटीज को यहां पे नहीं चाहते हैं। और फिर उसके बाद वो कहती हैं जी कि इन्होंने मिलिट्री वालों ने एक स्मीयर कैंपेन जो है खान के खिलाफ चलाई और उसको कहा कि ये ज्यूइश लॉबी का एजेंट है, और इसके ऊपर केपी के जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ उन्होंने भी कहा कि मीडिया मिस रिपोर्ट कर रहा है उनकी स्टेटमेंट्स को और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को ले रहा है। तो भाई फिर तुम क्लीयर करो ना थोड़ी बेगम का की मतलब है, बारह थोड़ी बेगम न एडा भी मतलब बयान देने की जरूरत है, चुप करके उन्होंने बैठना चाहिए उन्होंने कि अगर तुम कहते हो जी मेरी फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर आप बुजरा बीबी क्यों आ रही है जी बार बार पॉलिटिक्स में, फिर आराम से बैठे। आपका लॉयर भी कहता है जी कि वो हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ बन के बैठो यार, इमरान खान की बेचारी की एक ही बहन बोलती है ना, दूसरी तो बोलती भी नहीं है, जिसको उसने कहा हुआ है बस वही बोलती है, तो अब वाई इज शी अननेसेसरली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर हर हस्बैंड। PMLN ने बहरहाल जी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जो बीबी के रिमार्क्स हैं उसके ऊपर आज क्रिटिसाइज किया है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा है कि सऊदी अरेबिया को जो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई रिग्रेटेबल है। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो उनकी डेस्परेशन शो करते हैं माइंडसेट की, और उन्होंने कहा जी कि इस तरह की बातें जो है वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिसमें फॉरेन पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज होती है। आपको बड़े ऑब्जेक्टिव सामने रखने चाहिए। हमारे बड़े ब्रदरली टाइज हैं पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहे। इसी तरह डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा है कि जी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए अब रिलीजन का इस्तेमाल पीटीआई कर रही है और इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है और शरिया कार्ड खेल रही है, और ये इंतहाई भद्दा फेस पॉलिटिक्स का पाकिस्तान में सामने आया। कितना गिरोगे पीटीआई वालों, इतना ज्यादा तुम लोग जो है गिर गए, उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा जी कि 2.8 मिलियन पाकिस्तानी जो है सऊदी अरेबिया में एम्प्लॉयड है, आप क्यों इस सारी चीज को जेपरडाइज करते हैं। पंजाब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा बुखारी साहब ने भी कहा कि ये सुइसाइडल अटैक है, उनके कॉमेंट्स के बारे में कहा, और उन्होंने कहा जी कि ये आपको नहीं करना चाहिए था एक फ्रेंडली इस्लामिक कंट्री के बारे में। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारण ने भी उनके कमेंट्स को बहुत कंडेम किया और एक्यूज किया कि वो जो है आप कैसे एक कंट्री के बारे में बोल सकते हैं जहां आपने अपनी बेटी तक ब्याई हुई है, और वो जब उस कंट्री से आप गिफ्ट्स ले रहे थे बुशरा बीबी और उसको ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे, तो उस वक्त तो आपको सऊदी अरेबिया बुरा नहीं लग रहा था। अभी आप जो है ऐसे गंदे और भद्दे किस्म के एलिगेशन उनके खिलाफ लगा रहे हो और आप बिल्कुल उनके हाथों में खेल रहे हो, उन फोर्सेस के हाथों में जो कि सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट हॉस्टाइल हैं। तो काफी आज जो है भड़की हुई जनता नजर आई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने आज कहा जी कि हम बिल्कुल टेररिस्टों को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी हम जो है वो सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये चीजें उन्होंने इन ख्यालात का इजहार उन्होंने किया जब वो पिशावर को विजिट कर रहे थे और एक फॉलो अप कर रहे थे नेशनल एपेक्स कमेटी का मीटिंग जो उन्होंने लास्ट ट्यूसडे को बुलाया था, और उसमें वो पूछना चाहते थे कि अब चीजें जो हैं किस तरफ चल रही हैं। उन्होंने कहा जी कि ये जो टेररिस्ट जो हैं इनके ये जो बुरे किस्म के डिजाइन हैं इनको हम खत्म करेंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हंट डाउन करेंगी इन एनिमीज ऑफ पीस को, इनको खत्म करेंगी और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी जो है वो नेट बना रहे हैं और ताकि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है इफेक्टिवली चलाया जा सके। इस मौके पे केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर इनके साथ थे, हालांकि पहले खबर आई थी कि शायद उनको अरेस्ट करने के जो है वो वारंट्स भी जारी किए गए हैं, लेकिन अब पता नहीं, अब हम खुद मीडिया से हैं, पता नहीं मीडिया कितना सच बोल रहा है वहां पर। और इसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड कमांडर्स भी उनके साथ थे। इस मौके पर उन्होंने जो गाजी हैं जिन्होंने अपनी जाने दी हैं कौम के लिए और जो मार्टर्स हैं नहीं सॉरी जो मार्टर्स हैं जिन्होंने जाने दी और जो गाजी हैं उन सब की जो है बड़ी उनको रिच ट्रिब्यूट्स पे किए। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं जी जेपी नड्डा साहब, वो भी आज बड़े गुस्से में नजर आए अगेंस्ट कांग्रेस, और उन्होंने कहा जी कि कांग्रेस एक झूठ जो है वो फैला रहा है और एक फॉल्स नैरेटिव जो है मणिपुर के ऊपर जो है फैला रहा है ताकि वहां पे अनरेस्ट रहे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने एक अर्लियर लेटर लिखा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को, और उन्होंने कहा था कि भाई मोदी जी तो कोई इंटरवीन कर नहीं रहे हैं मणिपुर में, आप प्लीज करो। नड्डा साहब ने आज कहा कि ये जो कुछ भी वहां पे हो रहा है ये कांग्रेस का फेलियर है, जो कुछ भी आपने जो गले लगाया है बड़े इलीगल जो माइग्रेशन होती थी अपने वोट बैंक के लिए, ये सारे के सारे वही घुसपैठिए हैं जो कि अब ये यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और अब आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं इस सिचुएशन को। जब आपका होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जो था जब वो ट्रीटी साइन कर रहा था सारे मिलिट्री लीडर्स को और एनकरेज कर रहा था उनको यहां पे आने के लिए, तो उसकी वजह से ये सारी चीजें जो है डिस्टेबलाइज मुल्क में हुई हैं और इंडिया की सिक्योरिटी को इतना बड़ा खतरा है, क्योंकि कांग्रेस जो है ये सारे का सारा उसका फेलियर था और ये वायलेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने आने से नहीं रोका जो कि अब मणिपुर का पीस खराब कर रही हैं, और आपने मणिपुर को इन एज ऑफ एनार्की जो है उसमें पुश कर दिया है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जनाब, आज अब आपकी वो मनपसंद स्टोरी जो आप सुनना चाहते हैं फिर अगेन, कल भी मैंने की थी आज फिर मैं जल्दी से करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि कितना वड्डा मतलब एक जिन बन गया जिसन पढ़ना जड़ा ना मुश्किल हो गया, गौतम अदानी। ठीक है जी, आज वैसे उनको धचका लगा क्योंकि कल उन्होंने 600 मिलियन डॉलर्स के जो बॉन्ड्स थे उनको कैंसिल कर दिया था जब वो रिपोर्ट आई थी यूएस की तरफ से। आज केनियन प्रेसिडेंट जो है विलियम रूतो, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इनको दिया गया था जो इसके केनिया के मेन एयरपोर्ट पे काम करने के लिए अदानी ग्रुप को, ये सारे का सारा ऑर्डर कैंसिल करो। ये डील जो थी इट वाज वर्थ 2 बिलियन यूएस डॉलर्स। अदानी ग्रुप जो थे उन्होंने दो रनवेज यहां पे जोमो केयाटा केनयाटा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसको बनाना था और फिर यहां पे पैसेंजर टर्मिनल को भी अपग्रेड करना था और उनको ये एयरपोर्ट 30 ईयर के लीज पे दिया गया था और उनको कैंसिल किया। इसके साथ साथ एक और 30 ईयर की 736 मिलियन की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो की गई थी, जो साइन की थी फॉर विद मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पेट्रोलियम टू कंस्ट्रक्ट पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, उनको भी कैंसिल किया गया है। अदानी पोर्ट्स जो हैं वो ओन करते हैं 70% ऑफ हाइफा पोर्ट्स इन नॉर्दर्न इसराइल भी, यानी कि इसराइल में भी उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं और 2023 में उन्होंने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से वो पोर्ट जो थी वो खरीदी थी। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जी बड़ा कंट्रोवर्शियल जो कार माइकल कोल माइन प्रोजेक्ट था 2010 में वो भी लिया था, लेकिन वहां पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा शोर हंगामा मचाया। उन्होंने कहा जी ये डैमेज करेगा ग्रेट बैरियर रीफ को, एमिशंस करेगा और इस चीज ने लैंडर्स को बड़ा डराया जो पीछे हट गए। और फिर उन्होंने कहा जी कि यहां पे बहुत ज्यादा रेसिज्म भी जो है वो भी देखा जा रहा है और एबोरिजिनल ग्रुप जो है उसने शिकायत की थी ऑस्ट्रेलिया के ह्यूमन राइट्स कमीशन से। अदानी पोर्ट्स जो है वो ओन करते हैं 51% ऑफ न्यू कंटेनर टर्मिनल इवन इन श्रीलंका कोलंबो में भी, और ये भी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने एक 2021 में अग्रीमेंट साइन किया था विद वेस्ट कंटेनर इंटरनेशनल टर्मिनल विद श्रीलंकन कॉन्ग्लोमरेट जॉन कील्स होल्डिंग्स, और इन्होंने यूएसए में रेज किया था 553 मिलियन फॉर यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। और ये जो स्यापे आए हैं ये इसीलिए आए हैं कि उन्होंने पैसा जो है अमेरिका से जो है वो जनरेट किया था और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि जी हमारे लॉज हैं कि अगर आप अमेरिका से पैसे जनरेट करते हैं तो दुनिया के किसी हिस्से में फिर आप रिश्वत नहीं दे सकते हैं। तो इन्होंने इंडिया में रिश्वत दे के जो लिए हैं उसकी वजह से जो है इनके ऊपर जो लॉ जस्टिस डिपार्टमेंट है वो इनके पीछे आया। इसके साथ साथ ही अदानी पावर जो थी उसने कहा जी कि 1600 मेगावाट का गोडा प्लांट हम झारखंड में लगाया जो था उससे ये बिजली जो थी दे रहे थे ढाका को, लेकिन फिर क्या करते थे बीच बीच में से ढाका की बिजली रोक देते थे, लेकिन उनका इल्जाम था कि ढाका जो है यानी बांग्लादेश हमें 800 मिलियन यूएस डॉलर्स अभी तक उसने नहीं दिए हैं। इसके साथ साथ ग्रुप ने बिल्ड किया था 10 गीगावाट्स का ओवरसीज इलेक्ट्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन नेपाल भूटान केन्या फिलीपींस। तंजानिया का जो कैपिटल है दारुसलाम उसके अंदर भी 95% स्टेक इन्होंने टर्मिनल्स में लिए थे वर्थ 39.5 मिलियन यूएस डॉलर्स, और इन्होंने इसके साथ साथ दो एयरपोर्ट्स जो वियतनाम में हैं उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया था। ये इन्वेस्टमेंट जो था तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स का था जो उनके न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि सी पोर्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और स्टॉक्स के अंदर किया गया था और नहीं किया स्टॉक्स में नहीं प्रोजेक्ट्स में किया गया था। तो कल जिस वक्त ये यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की खबर आई तो काफी इनको लॉसेस हुए, लेकिन आज 6% इंट्रा डे ट्रेड के अंदर इनके प्रॉफिट्स जो हैं फिर से राइज कर गए हैं। तो वही जो हम आपको बता रहे हैं कि अब इनको रोकना बहुत मुश्किल हो गया है ये जो है डॉन से भी आगे निकल गए हैं, क्योंकि आपको पता ही है ना डॉन का जो डायलॉग था, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो अब अदानी जी को भी पकड़ना अब मुश्किल नहीं नामुमकिन है, आप अब इनको रोक नहीं सकते हो। ये इतने बड़े देखो जरा इन्वेस्टमेंट्स क्या बिलियन ऑफ डॉलर की दुनिया सारी में इन्वेस्टमेंट्स वो करें है जी। तो पाकिस्तान में भी ऐसे कहने भाईजान तुम भी दोस्ती चोस्ती करो इंडिया के नाल, अदानी जी आपके मुल्क में आके कुछ इन्वेस्टमेंट्स करें हैं तो कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन एक दिन में आमिर साहब एक दिन मैंने कोई ज्यादा खरबें दूसरी नहीं करनी, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना वो मैंने बताना है। बड़ी तरक्की भी हो रही है यार, बहुत तरक्की भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं नहीं मैं बताऊंगी। अच्छा जनाब बादशाह जो है आज बादशाह के लोग पीछे पड़ गए हैं, वो कह रहे हैं ये जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर है इसके साथ तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि हानिया ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे बहुत सारे तस्वीरें जो है बादशाह के साथ डाले हैं और जो है वो बादशाह के बारे में कहा जा रहा है कि शायद र्यूमर्स हैं कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसने आज बादशाह ने कहा नहीं शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं उसके साथ बड़ा अच्छा हम दोनों का कनेक्शन होता है, वी डू अ लॉट ऑफ फन टुगेदर और शी इज हैप्पी इन हर लाइफ एंड आई एम हैप्पी इन माइंड। लोग जो है दोस्ती को मिस इंटरप्रेट करते हैं भाईजान, चीजें यहीं से चलती हैं, यही होता है हम सिर्फ दोस्त हैं और फिर आगे जाके क्या हो जाता है पहले लाला फिर घर वाला है जी तो ऐसे ही होता है। बादल जी उन्होंने अभी तो बादशाह ने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा जनाब अभिषेक बच्चन की फिल्म आई है आई वॉन्ट टू टॉक और ये इसको बनाया है सुजीत सरकार ने और लोग दीवाने हो गए हैं अभिषेक बच्चन के। अभिषेक बच्चन साहब जो हैं वो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल और एक बाप बने हुए हैं। इनका नाम है अर्जुन सेन, जो कि फाइट कर रहा है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर से। लोगों ने कहा वाह 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 बिग बी, आप बुरा मत बनाना, मगर आपका बेटा आपसे भी अच्छा एक्टर है। तो बहुत ही क्रिटिकल एक्लेम इनको मिल रहा है। और जनाब शाहरुख खान, किंग खान की बेटी सुहाना, जो किंग में ही नजर आएगी, मगर उसकी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है। आपको बताइए कि बहुत सारे एड्स में उसने लेटली आना शुरू किया है, लेकिन अभी ये जो नया एड आया है उसमें लोग बड़े गुस्से हो गए हैं। ये जो है एक डायलॉग सिर्फ बोलती है और फिर उसके बाद म्यूजिक वीडियो जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें ये नाचती वाचती है। तो जिस वक्त से ये सोशल मीडिया पे आया है तो लोग कह रहे हैं ना तो इस लड़की में कोई कैरिज्मा है, उल्टा नेगेटिव स्क्रीन प्रेजेंस है इसका। और वैसे तो ये सामने है, लेकिन हम तो जो पीछे के डांसर्स हैं हम उनको देख रहे हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव हैं इससे। तो बहुत ट्रोलिंग हुई आज बिचारी की। पीसीबी ने अपॉइंट किया है अजहर अली को एज हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट। इससे पहले भी उनके, यानी कि ये अब एडिट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इज ऑलरेडी मेंबर ऑफ नेशनल सिलेक्शन कमिटी फॉर मेन। अजहर साहब ने अपना खुद का जर्नी जो था आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2002 में शुरू किया था और फिर वो नेशनल टीम में आ गए थे। इनका करियर जो है वो 2010 से 2022 तक चला। इन्होंने 97 टेस्ट, 53 ओडीआई कैप्स लिए, कैप्टन किया नेशनल साइड को इन 9 टेस्ट एंड 31 ओडीआईज। ही वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड इन 2017। और इनको अब काम दिया गया है अंडर हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट, कि आप शेप करेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर को, डिजाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे कॉम्प्रीहेंसिव यूथ स्ट्रेटजीज, एस्टैब्लिश करेंगे ग्रास रूट लेवल्स क्रिकेट स्ट्रक्चर, टैलेंट को हंट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे रीजनल क्रिकेट एसोसिएशंस के साथ टू स्ट्रेंथन एज ग्रुप प्रोग्राम्स, और ऑर्गेनाइज करेंगे सेमिनार्स और क्लिनिक्स ताकि जो क्रिकेट की अवेयरनेस है वो फैसले। भाईजान हमारे मुल्क में है ही क्रिकेट की, बेचारे दूसरी गेम्स की तो अवेयरनेस ही नहीं है, तो और अब क्या अवेयरनेस करनी है। और जनाब सूत्रों के अनुसार अंदर की खबरें ये हैं कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब आज किसी भी वक्त, या कर ली होगी उन्होंने बात, कोई बातचीत करेंगे पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब से। जो शाह साहब हैं वो ट्रेवल करके दुबई पहुंच गए हैं, जहां पे के आईसीसी के ऑफिशियल्स के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि अभी भी बड़ी एम्बिग्विटी चल रही है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी, क्योंकि हिन्दुस्तान ने तो साफ ना कह दिया है। तो क्या हिंदुस्तान के मैचेस जो हैं दुबई में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? बहरहाल जी, अब ये फोन कॉल की जो डिटेल्स हैं जो जय शाह ने किया है मोहसिन नकवी को, इसकी डिटेल्स आएंगी तो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान जो है वो जनाब अब रेडी है जिम्बाब्वे से खेलने के लिए। पाकिस्तान ने हालांकि अपना T20 सीरीज अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से 3-0 से हराया और उसका मोराल काफी नीचे है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जी रिजवान के अंडर खेलते हुए वो काफी ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पे 22 ईयर्स के बाद हराई थी, तो इसलिए इतना भी वो डाउन नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं, आज उनका जिम्बाब्वे के अंदर एक फोटो सेशन था और अब ये खेलेंगे जिम्बाब्वे के साथ 3 ओडीआईज और 3 T20s। फर्स्ट जो ओडीआई है वो नवंबर 24 को रहेगा। एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और स्नो के आने की वजह से फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन ने जो मैचेस अभी वीकेंड पे आने वाले थे, विमेन्स टॉप लीग और मेन्स लोअर डिवीजन, उन सब मैचेस को कैंसिल किया है। मैचेस इन लीग वन जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। रग्बी मैच भी जो है फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में एट स्टैंड दी फ्रांस पेरिस में, वो भी शायद होएगा, लेकिन फुटबॉल मैचेस कैंसिल किए गए हैं। कैटानो स्टॉर्म जो है वो फिरेंस की तरफ आ रहा है और बहुत ही अर्ली विंटर लेकर आया है। इंतहाई वायलेंट विंड्स जो हैं वहां पे चल रही हैं, जिन्होंने ट्रेवल को भी काफी डिसरप्ट किया है और वेदर एजेंसी जो है उसने काफी अलर्ट्स इशू किए हैं फॉर फ्रीजिंग रेन एंड स्नो। ठीक है जी, तो ये है हमारी आज की कहानियां।
तो ये थी आज की खट्टी मीठी और रंगारंग खबरें।
हाँ, तो सुन लिया आपने कितना पैसा है अदानी के पास?
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
दुनिया का 22nd richest man।
चले जी, बहुत शुक्रिया आपका शायद जी।
शुक्रिया
आदमी की कहानियां सुना के आप खुद भी
जान छोड़ो यार, जान छोड़ो।
चले जी, जान छोड़ो।
दो दिन की छुट्टी दो।
अच्छा सॉरी, भूल गया। अब आप 2 दिन छुट्टी करें,
ठीक है?
मैं आपसे इंशाल्लाह मंडे वाला।
हाँ, बहुत बोलते हो, मेरे सर में दर्द हो गई है।
चले जी, बहुत शुक्रिया आपका शायद जी, हमारे साथ शामिल होने की जिंदगी रही। और अगर आप जिंदा रहे
ठीक है
तो फिर मंडे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया तमाम सामीन का और नाजरीन का भी हमारे साथ शामिल होने का। और अब जो है वक्त आ गया है ये नशिस्त को इख्तिताम की तरफ। तो पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, आरफा मुजफ्फर साहबा की तरफ से, माजिद जमाल साहब की तरफ से और हमारे इंजीनियर जशान अहमद की तरफ से और मैं आपका होस्ट आमिर अहमद की तरफ से इजाजत लेंगे। इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही तो मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।
के बाहें तरसती है, दिल में पुकारा है, हाँ अब तो चले आओ, आओ के शबनम की बूंदे बरसती है, मौसम इशारा है, हाँ अब तो चले on the ocean, come and feel me, come on, heal me.